दूसरा राजा अध्याय 22, अध्याय 22 पद 1 और 2। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोसक्तवासी अदाया की बेटी थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला ठीक उसी पर वो भी चला। और उसने ना तो दहनी ओर और ना बाई ओर मुड़ा। यहां आपको यरमिया की भविष्यवाणी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यरमिया की भविष्यवाणी यही से आरंभ हुई थी। योशिय्याह अच्छा राजा था। जहां तक आत्मिक सुधार का प्रश्न है, अब तक लोग मनुष्य के कारण इतने भ्रष्ट हो गए थे कि जागृति को एक आंदोलन का रूप लेना पड़ा था। राजा ने कहा कि उन्हें नया जन्म पाना है। इस तरह ये आंदोलन ख्याति प्राप्त करने का एक आंदोलन बन गया, परंतु ये एक सच्चा आंदोलन नहीं था और ना ही हार्दिक अनुभव। मंदिर फिर लोगों से भर गया। ये वहां की रीति थी, हर एक मनुष्य मंदिर जाने लगा। परमेश्वर ने यरमिया से कहा, मंदिर के दरवाजे के पास जा और जब लोग मंदिर में जाने के लिए आए चिल्लाकर कहना, व्यर्थ की बातों में विश्वास मत करो, और ना ये कहो परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। तुम परमेश्वर की सेवा सच्ची नहीं कर रहे हो। इन बातों के कारण यरमिया संकट में पड़ गया, परंतु ये परमेश्वर का आदेश था। उसको काल कोठरी में कैद कर दिया गया। वो बहुत मुसीबतों में पड़ गया, परंतु ये तब हुआ था जब उसने भविष्यवाणी आरंभ की और वो आने वाले 4 राजाओं के अंत तक भविष्यवाणी करता रहा। यरमिया ने योशिय्याह के समय फिर यहोयाकीम, सिदकाया और यहोयाचीन के दिनों में भविष्यवाणी की, परंतु यरमिया यहोयाचीन के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि उसका राज्यकाल बहुत छोटा था। यही वो समय था यरमिया भविष्यवाणी कर रहा था। अतः जब आप यरमिया की भविष्यवाणी पढ़ेंगे, तब आपको इतिहास का ये समय स्मरण करना होगा कि जिससे कि आप उसे उचित रूप से समझ पाए। जब आप बाइबल को इस प्रकार सामंजस्य में रखकर पढ़ते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। इस प्रकार बाइबल की पुस्तक को पढ़ते समय यदि आप यरमिया पर लिखी टीका पढ़ेंगे तो आपको इतिहास का ये भाग पढ़ने में आसानी होगी। इस प्रकार आपको पूरा परिदृश्य समझ में आ जाता है, यदि आप एक एक भाग अलग अलग पढ़ते हैं तो आप उलझन में पड़ जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा भाग इतिहास में कहां बैठता है। परंतु जब आप इतिहास को यशया और यरमिया की घटनाओं से जोड़ना आरंभ करते हैं तब आपको पूरी कहानी समझ में आने लगती है। अतः हमारे इस अध्ययन के बाद आप यशाया और यरमिया की पुस्तक को पढ़ें। इस सप्ताह जो समय आप दैनिक समाचार पत्र पढ़ने में लगाते जा रहे हैं, यदि आप उस समय को दोनों पुस्तकों को पढ़ने में लगाएं, तो आप इस समय के दौरान दोनों पुस्तकों को एक साथ पढ़ सकते हैं। अखबार पढ़ने से आपको क्या हासिल होने वाला है? संसार की स्थिति को देखकर उदासी, हतोत्साह और निराशा। परंतु यदि आप यरमिया और यशया पढ़े तो आपको परमेश्वर का वचन मिलता है। आप पाओगे कि अंधकार में भी परमेश्वर है, परमेश्वर कार्य कर रहा है और अंधकार के बाद वो ज्योति की प्रतिज्ञा देता है। योशिय्याह ने राज्य आरंभ किया, उसने सुधार आरंभ किया, मंदिर की पुनस्थापना की। जो मंदिर और वेदियां मनुष्य के दिनों में स्थापित किए गए थे उसने ढा दिए। उन्होंने मंदिर की सफाई की, उन्होंने मंदिर में चढ़ाए जाने वाले धन को मंदिर की टूट फूट परमेश्वर के भवन के रख रखाव के काम के लिए इस्तेमाल किया, और जब वे मंदिर की सफाई कर रहे थे उन्हें व्यवस्था की पुस्तक मिली। व्यवस्था बहुत दिनों से भुला दी गई थी, वे परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते थे। कुछ मनुष्य व्यवस्था की प्रति लेकर आए और याजक ने व्यवस्था पढ़नी आरंभ की, और पढ़ने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के नियम की कैसी अवज्ञा की है। अध्याय 22 पद 11। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। पद 13 कि ये पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की ओर सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जल जलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें ना मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। वे लोग हुल्दा नबिया के पास आए जो नबियों के दल के साथ थी। अध्याय 22 पद 15 से लेकर 20 तक। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे ये कहो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालना चाहता हूं। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराए देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जल जलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत ना होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है उससे तुम यूं कहो कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की ये वाणी है, इसलिए देख मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। योशिया ने व्यवस्था की बातें सुनी और उसने अपने कपड़े फाड़े, वो परमेश्वर के सम्मुख रोया। ये सच्चा पश्चाताप था। परमेश्वर तू जानता है हमने क्या किया है, हमारे पुरखाओं ने क्या किया है, इसलिए हुल्दा से परमेश्वर की इच्छा जानने पर ये संदेश मिला कि देश गिर जाएगा तो भी उसके अपने राज्य काल में नहीं। इसलिए उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और सबको व्यवस्था पढ़कर सुनाई गई।